पाठ एक विषय प्रवेश भौगोलिक पृष्ठभूमि हिमालय पर्वत के दक्षिण तथा हिंद महासागर के उत्तर में स्थित एशिया महाद्वीप का विशाल प्रायद्वीप भारत कहा जाता है। इसका विस्तृत भूखंड जिसे एक उपमहाद्वीप कहा जाता है आकार में विषम चतुर्भुज जैसा है। यह लगभग 2500 मील लंबा तथा 2000 मील चौड़ा है। रूस को छोड़कर विस्तार में यह समस्त यूरोप के बराबर है। यूनानियों ने इस देश को इंडिया कहा है तथा मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भौगोलिक दृष्टि से इसके चार विभाग किए जा सकते हैं। पहला उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जिसमें तराई के दलदल वनों से लेकर हिमालय की चोटी तक विस्तृत है, जिसमें कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित हैं। जो दूसरा है गंगा तथा सिंधु का उत्तरी मैदान। इस प्रदेश में सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियां, सिंध तथा राजस्थान के रेगिस्तानी भाग तथा गंगा और यमुना द्वारा संचित प्रदेश सम्मिलित हैं। यह भाग सर्वाधिक उपजाऊ है। यहाँ आर्य संस्कृति का विकास हुआ, इसे ही आर्यवर्त कहा गया है। जो तीसरा है दक्षिण का पठार। इस प्रदेश के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा तथा दक्षिण में कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का भूभाग आता है। चौथा सुदूर दक्षिण के मैदान। इसमें दक्षिण के लंबे एवं संकीर्ण समुद्री क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस भाग को गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश आते हैं। दक्षिण का पठार तथा सुदूर दक्षिण का प्रदेश मिलकर आधुनिक दक्षिण भारत का निर्माण करते हैं। नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ, विंध्य तथा सतपुड़ा पहाड़ियाँ और महाकांतार के वन मिलकर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करते हैं। इस पृथकता के परिणामस्वरूप दक्षिण भारत आर्य संस्कृति के प्रभाव से मुक्त रहा, जबकि उत्तर भारत में आर्य संस्कृति का विकास हुआ। दक्षिण भारत में एक सर्वथा भिन्न संस्कृति विकसित हुई जिसे द्रविड़ कहा जाता है। इस संस्कृति के अवशेष आज भी दक्षिण में विद्यमान हैं। प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई प्रदान की है। उत्तर में हिमालय पर्वत की एक ऊंची दीवार के समान इसकी रक्षा करता रहा है तथा हिंद महासागर इस देश को पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण से घिरे हुए है। इन प्राकृतिक सीमाओं द्वारा बाह्य आक्रमणों से अधिकांशतः सुरक्षित रहने के कारण भारत देश अपनी एक सर्वथा स्वतंत्र तथा पृथक सभ्यता का निर्माण कर सका है। भारतीय इतिहास पर यहाँ के भूगोल का गहरा प्रभाव पड़ा है। यहाँ के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग कहानी है। एक ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो दूसरी ओर नीचे के मैदान हैं। एक ओर अत्यंत उपजाऊ प्रदेश हैं तो दूसरी ओर विशाल रेगिस्तान हैं। यहाँ उभरे पठार, घने वन तथा एकांत घाटियाँ हैं। एक ही साथ कुछ स्थान अत्यंत उष्ण तथा कुछ अत्यंत शीतल हैं। विभिन्न भौगोलिक उपविभागों के कारण यहाँ प्राकृतिक एवं सामाजिक स्तर की विभिन्नताएँ दृष्टिगोचर होती हैं। ऐसी विषमता यूरोप में कहीं भी दिखाई नहीं देती है। भारत का प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र एक विशिष्ट इकाई के रूप में विकसित हुआ है तथा उसने सदियों तक अपनी विशिष्टता बनाए रखी है। इस विशिष्टता के लिए प्रजाति तथा भाषागत तत्व भी उत्तरदायी रहे हैं। फलस्वरूप संपूर्ण देश में राजनीतिक एकता की स्थापना करना कभी भी संभव नहीं हो सका है। यद्यपि अनेक समय में इसके लिए महान शासकों द्वारा प्रयास किया जाता रहा है। भारत का इतिहास एक प्रकार से केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों के बीच निरंतर संघर्ष की कहानी है। देश की विशालता तथा विश्व के शेष भागों से इसकी पृथकता ने अनेक महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न किए हैं। भारत की अपने आप में एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई होने के कारण भारतीय शासकों तथा सेना नायकों ने देश के बाहर साम्राज्य विस्तृत करने अथवा अपने सैनिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने का कभी कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भारत में ही किया। सुदूर दक्षिण के चोलों का उदाहरण इस विषय में एक अपवाद माना जा सकता है। अति प्राचीन समय से यहाँ भिन्न भिन्न जात, भाषा, धर्म, वेशभूषा तथा आचार संहिता, आचार विचार के लोग निवास करते हैं। किसी भी बाहरी पर्यवेक्षक को यहाँ की विभिन्नताएं खटक सकती हैं, परंतु इन बाह्य विभिन्नताओं के मध्य एक एकता दिखाई देती है जिसकी कोई भी उपेक्षा नहीं कर सकता। फलस्वरूप विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारतीय संस्कृति की सर्व प्रमुख विशेषता बन गई है। देश की समान प्राकृतिक सीमाओं ने यहाँ के निवासियों के मस्तिष्क में समान मातृभूमि की भावना जागृत किया है। मौलिक एकता का विचार यहाँ सदैव बना रहा तथा इसने देश के राजनीतिक आदर्शों को प्रभावित किया। यद्यपि व्यवहार में राजनीतिक एकता बहुत कम स्थापित हुई, तथापि राजनीतिक सिद्धांत के रूप में इसे इतिहास के प्रत्येक युग में देखा जा सकता है। सांस्कृतिक एकता अधिक सुस्पष्ट रही है। भाषा, साहित्य, सामाजिक तथा धार्मिक आदर्श इस एकता के प्रमुख माध्यम रहे हैं। भारतीय इतिहास के अति प्राचीन काल से ही हमें इस मौलिक एकता के दर्शन होते हैं। महाकाव्य तथा पुराणों में इस संपूर्ण देश को भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासों को भारतीय, भारत की संतान कहा गया है। विष्णु पुराण में स्पष्टतः इस एकता की अभिव्यक्ति हुई है। समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है तथा वहाँ की संतानें भारतीय हैं। प्राचीन कवियों, लेखकों तथा विचारकों के मस्तिष्क में एकता की यह भावना सदियों पूर्व से ही विद्यमान रही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन विस्तार वाला भाग चक्रवर्ती राजा का शासन क्षेत्र होता है। यह सार्वभौम सम्राट की अवधारणा भारतीय सम्राटों को अत्यंत प्राचीन काल से ही प्रेरणा देती रही है। भारतीयों की प्राचीन धार्मिक भावनाओं एवं विश्वासों से भी इस सार्वभूत एकता का परिचय मिलता है। यहाँ की 7 पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंध तथा कावेरी, 7 पर्वत महेंद्र, मलय, सह्य, शक्तिमान, ऋष्य, विंध्य तथा परियात्र तथा 7 नगरियाँ अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतीपुरी तथा द्वारावती देश के विभिन्न भागों में बसी हुई होने पर भी देश के सभी निवासियों के लिए समान रूप से श्रद्धेय रही हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों का सर्वत्र सम्मान है तथा शिव और विष्णु आदि देवता सर्वत्र पूजे जाते हैं। यद्यपि यहाँ अनेक भाषाएं हैं तथापि वे सभी संस्कृत से ही उद्भूत अथवा प्रभावित हैं। धर्मशास्त्रों द्वारा प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्था भी सर्वत्र एक ही समान है। वर्णाश्रम, पुरुषार्थ आदि सभी समाजों के आदर्श रहे हैं। प्राचीन समय में जबकि आवागमन के साधनों का अभाव था, पर्यटक, धर्मोपदेशक, तीर्थयात्री, विद्यार्थी आदि इस एकता को स्थापित करने में सहयोग प्रदान करते रहे हैं। राजसूय, अश्वमेघ आदि यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा चक्रवर्ती पद के आकांक्षी सम्राटों ने सदैव इस भावना को व्यक्त किया है कि भारत का विशाल भूखंड एक है। इस प्रकार विभिन्नता के बीच सारभूत एकता भारतीय संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता बनी हुई है। निर्जातीय तत्व आदिकाल से ही भारत में विभिन्न जनजातियाँ निवास करती थी जिनकी भाषाओं, रहन सहन, सामाजिक धार्मिक परंपराओं में भारी विषमता थी। भारत में निर्जाति तत्वों की पहचान प्रधानतः भौतिक, भाषाई का तथा सांस्कृतिक लक्षणों पर आधारित है। नृतत्व विज्ञान मानव की शारीरिक बनावट के आधार पर उसकी प्रजाति का निर्धारण करता है। इसके 2 प्रधान मानक हैं। यह पहला सिर संबंधी तथा दूसरा नासिका संबंधी। हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि प्राचीन जनजाति में लंबे तथा चौड़े दोनों ही सिरों वाले लोग विद्यमान थे, जैसा कि प्राचीन कंकालों एवं कपालों से इंगित होता है। भारत में प्रागैतिहासिक मानवों के प्रसारित अवशेष अत्यल्प हैं, किंतु नेतृत्व एवं भाषा विज्ञान की सहायता से यहाँ रहने अथवा अवर्जित होने वाली प्रजातियों तथा भारतीय संस्कृति के विकास में उनके योगदान का अनुमान लगाया गया है। B.S. गुहा ने प्रागैतिहासिक अस्थि पंजरों का अध्ययन करने के उपरांत यहाँ की आदिम जातियों को 6 भागों में विभाजित किया है। पहला नेग्रिटो, दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, तीसरा मंगोलियन, चौथा मेडिटेरेनियन भूमध्य सागरी, 5वां पश्चिमी ब्रेकाइसेफलस, 6ठा नार्डिक। भाषाविदों ने उपयुक्त प्रजातियों को 4 भाषा समूहों के अंतर्गत किया है। पहला आस्टिक, दूसरा द्रविड़ियन, तीसरा इंडो यूरोपियन, चौथा तिब्बतो चाइनीज। इनका विवरण इस प्रकार है। जो निग्रिटो है, यह जाति जो है निग्रिटो, यह भारत की सबसे प्राचीन जाति थी। अब यह स्वतंत्र रूप से तो कहीं नहीं मिलती, लेकिन इसके तत्व अंडमान निकोबार, कोचीन तथा त्रावणकोर की कदार एवं पालियन जनजातियों, असम के अंगामी नागाओं, पूर्वी बिहार, होट, चौड़ी नाग तथा काले रंग के होते थे। इनके प्रमुख देन धनुष बाण की खोज एवं आदिवासियों में मिलने वाले कुछ धार्मिक आचरणों तथा 2-4 शब्दों तक सीमित है। हदन का विचार है कि बट पीपल पूजा, मृतक की आत्मा और गर्भाधान संबंधी मान्यता, स्वर्ग पथ पर दानवों की पहरेदारी संबंधी विश्वास आदि निग्रिटो प्रभाव से ही प्रचलित हुए। जो दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, ये भारतीय जनसंख्या के आधारभूत अंग थे तथा उनकी बोली ऑस्टिक भाषा समूह की थी। इसका कुछ उदाहरण आदिम कबीलों की मुंडा बोली में आज तक पाया जाता है। तिनवेल्ली से प्राप्त प्रागैतिहासिक कपालों में इस प्रजाति के तत्व मिलते हैं। संस्कृत साहित्य में उल्लिखित निषाद जात इसी वर्ग की है। ये छोटे कद, लंबे सिर, चौड़ी नाक, मोटे होठ, काली बुरी आंखें, घुघराले बाल एवं चॉकलेटी त्वचा वाले होते हैं। अधिकांश दक्षिणी भारत तथा मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों में इस प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। इन्हें मृदभांड बनाने तथा कृषि का ज्ञान था। चावल, कदली, नारियल, कपास आदि का ज्ञान था। मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व में विश्वास, धार्मिक कार्यों में तांबूल, सिंदूर और हल्दी का प्रयोग, लिंगोपासना, निछावर प्रथा का प्रारंभ, चंद्रमा की कलाओं के अनुसार तिथि गणना, नाग, मकर, हाथी, कच्छप आदि की पूजा का प्रारंभ भारतीय संस्कृति को इस प्रजाति की प्रमुख देन स्वीकार की जाती है। तीसरा जो है मंगोलायड है, ये छोटी नाक, मोटे होंठ, लंबे चौड़े सिर, पीले अथवा भूरे चेहरे वाले होते थे। इस जनजाति ने पूर्व की ओर से भारत में प्रवेश किया। इस जनजाति के तत्व मिरी, नागा, बोडो, गोंड, भोटिया तथा बंगाल, असम की जनजातियों में मिलते हैं। इनकी भाषा चीनी तिब्बती समूह की भाषा से मिलती है। संभवतः मंगोल जात के प्रभाव से ही भारतीय संस्कृति में तंत्र, वामाचार, शक्ति पूजा एवं कुछ अश्लील धार्मिक कृत्यों का आविर्भाव हुआ। मोहनजोदड़ो की कुछ छोटी छोटी मूर्तियों तथा कपालों में इस जात के शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं। जो चौथा है मेडिटेरेनियन है, भूमध्य सागरी। इस प्रजाति की तीन शाखाएं भारत में आई तथा अंतर्विवाह के फलस्वरूप परस्पर घुल मिल गई। मिश्रित रूप से उनके वंशज बड़ी संख्या में भारत में विद्यमान हैं। इनकी एक शाखा कन्नड़, तमिल, मलयालम भाषाभाषी प्रदेश में तथा दूसरी पंजाब तथा गंगा की ऊपरी घाटी में तथा तीसरी सिंध, राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। सामान्यतः भूमध्य सागरी प्रजाति का संबंध द्रविड़ जाति से बताया जाता है। इसके अस्थि पंजर सदैव सभ्यता में भी मिलते हैं ये लंबे सिर, मध्यम कद, चौड़े मुंह, पतले होठ, घुंघराले बाल, भूरी त्वचा वाले होते हैं। इनकी प्रमुख देन है नव परिवहन, कृषि एवं व्यापार, वाणिज्य, नगर सभ्यता का सूत्रपात आदि। कुछ विद्वान द्रविड़ों को ही सैंधव सभ्यता का निर्माता मानते हैं, किंतु यह संदिग्ध है। भाषाविदों का विचार है कि भारत में यूरोपीय भाषा में जो परिवर्तन दिखाई पड़ता है वह भूमध्य सागरी अथवा द्रविड़ संपर्क का ही परिणाम था। जो पांचवा है पश्चिमी ब्रोकाइसेफलस, इनकी भी तीन शाखाएं हैं, अल्पाइन, डिनारिक तथा अर्मिनायड। यूरोप में आल्पस पर्वत के सीमावर्ती क्षेत्र में रहने के कारण इस प्रजाति को अल्पाइन कहा जाता है। गुजरात, बिहार तथा उत्तर तथा मध्य भारत में यह प्रजाति पाई जाती है। ये चौड़े कंधे, गहरी छाती, लंबी व चौड़ी टांग, चौड़ा सिर, छोटी नाक, पीली त्वचा वाले होते हैं, जिनकी डिनारिक शाखा बंगाल, उड़ीसा, काठियावाड़, कन्नड़ तथा तमिल भाषी क्षेत्र में रहती है। तीसरी शाखा अर्मिनायड है, जिसके तत्व मुंबई के पारसियों में दिखाई देते हैं। भारतीय संस्कृति को इनका योगदान स्पष्ट नहीं है। जो छठा है नार्डिक, इस प्रजाति को आर्यों का प्रतिनिधि तथा हिंदू सभ्यता का जनक माना जाता है। ये लंबे सिर, श्वेत व गुलाबी त्वचा, नीली आंखें, सीधे एवं घुघराले बालों वाले लक्षणों से युक्त थे। सर्वप्रथम यह प्रजाति पंजाब में बसी होगी तथा वहां से धीरे धीरे देश के अन्य भागों में फैल गई, किंतु आर्य वस्तुतः एक भाषिक पद है जिससे भारूपीय मूल की एक भाषा समूह का पता चलता है। यह नृवंशी पद नहीं है, अतः आर्य आवर्जन की धारणा भ्रामक है। प्रजाति की परिकल्पना, कुछ विद्वानों की मान्यता है कि भारत में सभ्यता का जन्म नहीं हुआ, यहाँ तो बाहर से ही लोग आए और बस गए। संस्कृत भारत की भाषा नहीं थी, यह तो मध्य एशिया से भारत में आई थी। मैक्स मुलर तथा सर विलियम जोन्स के अनुसार आर्य प्रजाति भारत की नहीं थी। उन्हीं के अनुकरण पर कुछ तथाकथित भारतीय प्रगतिवादी इतिहासकारों ने आर्यों को घुमक्कड़, घुसपैठिया तथा आक्रमणकारी सिद्ध कर दिया। द्रविड़ों को भी भूमध्य सागरी माना गया। एलियट स्मिथ का तो कहना है कि विश्व की समस्त सभ्यताएं मिस्र में जन्मी तथा वहीं से अन्य देशों में फैली, किंतु पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्रतिपादित प्रजाति का सिद्धांत अत्यंत भयावह व कुटिलतापूर्ण है। यूरोपीय ईसाई मिशनरियों तथा विद्वानों ने भारत को सदा औपनिवेशिक दृष्टि से देखा। यह सिद्ध करने के लिए अनेक तर्क गढ़े गए कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अपना कोई वैशिष्ट्य नहीं है तथा ईसा के 2000 वर्ष पहले यूरोप तथा उसके सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाली प्रजातियां ही भारत में विभिन्न मार्गों से आई तथा अपनी सभ्यता स्थापित किया। पाश्चात्य विद्वानों ने आर्य तथा द्रविड़ शब्दों को प्रजात तथा स्थानवासी माना, जिसका प्रतिकार भारतीय विद्वानों ने नहीं किया। भारत तथा उसकी संस्कृति को जात, प्रजात, नृवंश, स्थान, भाषा, भूगोल आदि के आधार पर विभाजित करने का जो षड्यंत्र अंग्रेजों ने अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रचा था, उसे ही प्रगतिवादी विद्वानों ने मान्यता प्रदान की तथा संस्कृति शब्द की मूल अवधारणा को ही आयातित स्वीकार कर लिया गया। आर्य तथा द्रविड़ जैसे शब्द प्रजातिगत न होकर गुणवाचक हैं और इसी अर्थ में इनका प्रयोग वैदिक साहित्य में हुआ है। आर्य का अर्थ है बौद्धिक प्रतिभा से संपन्न श्रेष्ठ पुरुष, स्वामी, विद्वान, समाज का अग्रणी वर्ग। इसी प्रकार द्रविड़ का अर्थ समृद्ध वर्ग, धान्य, धन से संपन्न व्यक्ति, ऐश्वर्यवान पुरुष आदि। अतः इन शब्दों के आधार पर प्राचीन भारत में जात प्रजात निर्वंश आदि की परिकल्पना करना उचित नहीं होगा। इतिहास जानने के साधन जो हैं, ये भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है, परंतु दुर्भाग्यवश हमें अपने प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उपयोगी सामग्री बहुत कम मिलती है। प्राचीन भारतीय साहित्य में ऐसे ग्रंथों का प्रायः अभाव सा है जिन्हें आधुनिक परिभाषा में इतिहास की संज्ञा दी जाती है। यह भी सत्य है कि हमारे यहाँ हेरोडोटस, थ्योटिडाइडिस अथवा लिवी जैसे इतिहास लेखक नहीं उत्पन्न हुए, जैसा कि यूनान, रोम आदि देशों में हुए। कतिपय पाश्चात्य विद्वानों ने यह आरोपित किया कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास बुद्धि का अभाव था। लोयस डिकिंसन के अनुसार हिंदू इतिहासकार नहीं थे। भारत में मनुष्य प्रकृति के समक्ष अपने को तुच्छ और असमर्थ पाता है, फलस्वरूप उसे नगण्यता तथा जीवन की निस्सारता जन्म लेती है। उसे जीवन की अनुभूति एक भयानक दुस्वप्न के रूप में होती है और दुस्वप्न का कोई इतिहास नहीं होता। विंटर निर्स की मान्यता है कि भारतीयों ने मिथक, आख्यान तथा इतिहास में कभी भी स्पष्ट विभेद नहीं किया और भारत में इतिहास रचना काव्य रचना से ऊपर नहीं उठ सकी। मैकडोनल्ड के अनुसार भारतीय इतिहास, भारतीय साहित्य का दुर्बल पक्ष इतिहास है जिसका यहाँ अस्तित्व ही नहीं था। इसी विचारधारा का समर्थन एल्फिंस्टन, फ्लिट, मैक्स मूलर, वी ए स्मिथ जैसे विद्वानों ने भी किया है। 11वीं सदी के मुस्लिम लेखक अलबरूनी ने इससे मिलता जुलता विचार व्यक्त करते हुए लिखता है, हिंदू लोग घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की ओर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते, घटनाओं के तिथि क्रमानुसार वर्णन करने में बड़ी लापरवाही बरतते हैं, किंतु भारतीयों के इतिहास विषय ज्ञान पर पाश्चात्य विद्वानों द्वारा लगाया गया उपरोक्त आरोप सत्य से परे है। वास्तविकता यह है कि प्राचीन भारतीयों ने इतिहास को उस दृष्टि से नहीं देखा जिससे कि आज के विद्वान देखते हैं। उनका दृष्टिकोण पूर्णतया धर्मपरक था। उनकी दृष्टि में इतिहास साम्राज्यों अथवा सम्राटों के उत्थान अथवा पतन की गाथा न होकर उन समस्त मूल्यों का संकलन मात्र था जिनके ऊपर मानव जीवन आधारित है। अतः उनकी बुद्धि धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों की रचना में ही अधिक लगी, न कि राजनैतिक घटनाओं के अंकन में। तथापि इसका अर्थ यह नहीं है कि प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक चेतना का भी अभाव था। प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ के निवासियों में अति प्राचीन काल से ही इतिहास बुद्धि विद्यमान रही। बौद्धिक साहित्य, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में अत्यंत सावधानीपूर्वक सुरक्षित आचार्यों की सूची से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वंश के अतिरिक्त गाथा तथा नारासंती साहित्य जो राजाओं तथा ऋषियों के स्तुतिपरक गीत हैं से भी सूचित होता है कि वैदिक युग में इतिहास लेखन की परंपरा विद्यमान थी। इसके अतिरिक्त इतिहास तथा पुराण नाम से भी अनेक रचनाएँ प्रचलित थीं। इन्हें पंचम वेद कहा गया है। 7वीं सदी के चीनी यात्री ह्वेन सांग ने लिखा है कि भारत के प्रत्येक प्रांत में घटनाओं का विवरण लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। कल्हण के विवरण से पता चलता है कि प्राचीन भारतीय विलुप्त या विस्मृत इतिहास को पुनर्जीवित करने की कुछ आधुनिक विधियों से भी परिचित थे। वह लिखता है कि वही गुणवान कवि प्रशंसा का अधिकारी है जो राग द्वेष से मुक्त होकर एकमात्र तथ्यों के निरूपण में ही अपनी भाषा का प्रयोग करता है। वह हमें बताता है कि इतिहासकार का धर्म मात्र घटनाओं में नई घटनाओं को जोड़ना नहीं होता, अपितु सच्चा इतिहासकार प्राचीन अभिलेखों तथा सिक्कों का अध्ययन करके विलुप्त शासकों तथा उनकी विजयों की पुनः खोज करता है। कल्याण का यह कथन भारतीयों में इतिहास बुद्धि का सबल प्रमाण प्रस्तुत करता है। इस प्रकार यदि हम सावधानी पूर्वक अपने विशाल साहित्य की छानबीन करें तो उसमें हमें अपने इतिहास के पुनर्निर्माणार्थ अनेक महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होगी। साहित्यिक ग्रंथों के साथ साथ भारत में समय समय पर विदेशों से आने वाले यात्रियों के भ्रमण वृत्तांत भी इतिहास विषयक अनेक उपयोगी सामग्रियां प्रदान करते हैं। इधर पुरातत्ववेत्ताओं ने अतीत के खंडहरों से अनेक ऐसी वस्तुएं खोज निकाली हैं जो हमें प्राचीन इतिहास संबंधी बहुमूल्य सूचनाएं प्रदान करती हैं। अतः हम सुविधा के लिए भारतीय इतिहास जानने के साधनों को 3 शीर्षकों में रख सकते हैं, जो पहला है साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा विदेशी यात्रियों के विवरण, तीसरा पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। यहाँ हम प्रत्येक का अलग अलग विवेचन करेंगे। जो इस साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक साक्ष्यों से प्राप्त ऐतिहासिक सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। हमारा साहित्य 2 प्रकार का है। यह साहित्यिक साक्ष्य का जो वर्णन है इसमें 2 प्रकार के साहित्यिक साक्ष्य हैं, जो पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य जो है इसमें धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों में फिर वेद उपनिषद रामायण महाभारत पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं, जबकि ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध तथा जैन साहित्यों से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। इसी प्रकार लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों जीवनियां कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य का वर्णन किया गया है। इनका अलग अलग विवरण इस प्रकार है।